इसके बाद अगर आप आगे नोट करें ना आयात, तो 168 से 173 में रिस्क के हलाल खाने की तलकीन है, या अय्युहन्ना सुकुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तैयबा, पहले सारी इंसानियत को पुकारा है। और अगर आयत 172 देखें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को भी कह दिया। क्या पता चला कि हलाल खाना ही असल में नेकियों के करने की दलील है। शैतान क्या करता है, हलाल को हराम, हराम को हलाल करवा देता है। फिर आपने इसमें चार चीजें भी देखी हैं जो शरीयत इस्लामिया में हराम है, इनका तذکرہ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस आयत का ये टुकड़ा आप बहुत नोट कर लीजिएगा कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दमा, मुर्दार, वो जानवर जो खुद ही मर गया, मुर्गी है खुद ही मर गई, बकरी है छत से गिरी तो मर गई, दम, खून, लाहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, और वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, पूरी इस्लामी शरीयत में ये सिर्फ चार चीज़ें हराम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान क्या करता है कि खा लो ना, कुछ नहीं होता। और अमूमन देखिए रसूमात के नाम पे और ख़ानदानी रिवायात के नाम पे ऐसे काम करवाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम वला तत्तबियू खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों पे ना चलो। क्या पता चला कि शैतान के पीछे लगकर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम नहीं करना। इस पे एक हदीस सुन लीजिए, इब्ने माजा की रिवायत है 2144, हजरत जाबिर इसके रावी हैं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगो अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इत्तेदाल के साथ रोजी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगरचे इस रिस्क के हसूल में देर हो जाए। बस अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है उसको छोड़ दो। आज उम्मत मुस्लिमा को एक दुआ मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे। उम्मे सलमा से ये रिवायत मौजूद है और इसका रेफरेंस भी आपके सामने लिखा हुआ है, मिश्कातुल मसाबीह में 2498 है। और फजर की नमाज के बाद आप एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफियन, नफे वाला इल्म, व अमलन मुतकब्बलन, कबूलियत वाला अमल, व रिज़्क़न तय्यिबा, और पाकीज़ा रिस्क दे। तो अल्लाह ताला किसी भी तरह से कोई नाजायज़ रिस्क, कोई एक लुकमा भी हमारे पेट में ना लाए, क्योंकि उससे दुआएं कबूल नहीं होती और इंसान की नेकियां भी कबूल नहीं होती। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ इन आयात में 168 से 173 में एक और बात पता चलती है, और वो क्या, कि इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल्फख्शाई वन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान का गोल ये है कि इल्म और दलील के बगैर अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब कर दी जाए। अल्लाह ताला ने इससे आपको मुझे रोक दिया। एक और बुत बहुत बड़ा था जो अल्लाह के नबी ने तोड़ा, और वो था आबा परस्ती। हमारे बड़े ये कहते थे, इसको इंग्लिश में आप इंसेस्टर वर्शिप कह लीजिए, उसका तस्करा है आयत 170 में कि वाइज़ा क़ील लहुम उत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जब इनको कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने दिया, जो अल्लाह का हुक्म है, कहते थे नहीं हम तो वो करेंगे जो हमारे माँ बाप करते थे। क्या पता चला कि इस्लाम अंधी तकलीद से मना करता है। बहुत सी मुआशरती रसूमात इंसानी गुमराही का सबब बनती हैं। इस पे तो हमारी बहनें सिर्फ शादी ब्याह की कई रस्में ही देख लें, सिर्फ वो चल रही हैं तो चल रही हैं और उसमें कितनी खराबियां हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हम पीछे नहीं होते कि लोग बातें करेंगे। क्या पता चला कि तासुबात इंसान को दीनी बसीरत से बेबहरा कर देते हैं और हिदायत से महरूम कर देते हैं। तो जो काम करें उसकी दलील हो। फिर चूंकि हराम और हलाल की बातें थी तो एक्सेप्शन भी दे दी, फमनेस्तुर्र गैर बागिम वला आद, कि अगर जान के लाले पड़ जाएं तो हराम खाने की इजाज़त है। कितना, जान बचाने के लिए बवक्ते ज़रूरत सिर्फ आप इतना खा सकते हैं कि जिसके बाद आप हलाल तक पहुंच जाएं। क्या पता चला कि इंसान की बेराह रवि और अखलाकी बुराइयों में हराम और नापाक ग़िज़ाओं का बड़ा ताल्लुक है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल ख़राब हो तो गाड़ी झटके देगी। बस आप ख़राब चीज़ खा ले तो आपका स्टमिक अपसेट होता है। बिल्कुल रूहानी तौर पे रिस्क हराम का असर हमारी नमाज रोज़े से लेके हर इबादत पे आता है। फिर आयत 174 से 176 में उलमाए सू पर अल्लाह का गज़ब, यानी देखिए इल्म वाले की बड़ी सख्त पकड़ होगी। आम लोग तो बेचारे ऐसे ही, जैसे ड्राइवर पे भरोसा करके लोग बस में बैठ जाते हैं, पायलट पे ट्रस्ट करके लोग आसमान पे भी उड़ने लग जाते हैं, दीन वाले पर लोगों का एतमाद बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ भी छुपा ले। अब आप सीधे साधे भोले भाले लोग बैठे हैं, बात करने वाला कुछ भी कह दे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयात में इन अल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब के बाद इस बात की वाईद दी कि जिसने हक को छुपाया उसने बहुत बड़ा जुल्म कमाया, क्योंकि हक के छुपाने की वजह से मुख्तलिफ फ़िरके वजूद में आए। आज हर गिरोह कुरान की आयतों से ही अपने मसालिक और अपने मजाहिब और अपने सारे काम साबित करता है। लोग कहते हैं हम किधर जाएं, किससे पूछें, वो भी तो कुरान से ही बात करते हैं। एक बंदा उसी चीज़ को इतने फजीलत वाली बात करता है, दूसरा कहता है ये बिदअत है, एक कहता है ये हलाल है, एक कहता है हराम है। तो इसका इलाज क्या है? खुद इल्म लीजिए, अपने बच्चों को बचपन में दीन के लिए लगाइए, आप इंशाल्लाह डायरेक्ट सोर्सेज पे आएंगे तो बात बनेगी। इसके बाद सबसे अहम आयत इस पारे की 177, इसको आयते बिर भी कहते हैं, नेकी का सही तसव्वुर। आज पिक एंड चूज वाली नेकियां करके मुसलमान बहुत ही खतरों में आ गए। तो लैसल बिर्रान तुवल्लू से शुरू करके वउलाइका हुमुल मुत्तकून, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय फेवरेट आयत। इसको अलग से भी कई दफा दरख्तों की मिसालों से दिया कि रूट टू फ्रूट, जड़ अकीदा है, तना इबादात है, ऊपर की शाखें मामलात है, और ऊपर के पत्ते जो हैं ये आपका अखलाक है, और फिर फ्रूट्स जो हैं वो आपको ईमान का फल है। यानी आज हमारा मसला क्या है, हम छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, छोटी छोटी बातें, कहीं मसल की इख्तलाफात है, कहीं माशर्ती बातें हैं, लेकिन जो अकीदा है उसमें हमारे दीमक लगा हुआ है। अब एक दरख्त की जड़ें ही खराब हों तो आप उसके पत्ते झाड़ते रहेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप इसकी डीप तफसीर सुनिए, अलग से भी इसकी मौजूद है, यूट्यूब पे भी तफसीर हमारी साथ साथ आ रही है, और किसी और की भी सुन लीजिए जो बिल्कुल प्योर सिंपल फैक्ट्स में आपको दीन का खुलासा दे। यहाँ जो पैगाम है वही किबले की तब्दीली वाला कि लैसल बिर्रान तुवल्लू, अपने चेहरों को सिर्फ किबले की तरफ फेरने कोई नेकी ना समझा करो, देखा करो कि उस नमाज में तुम्हारा दिल कितना लगता है, तो मशरिक हो या मगरिब उसकी तरफ रुख करना तो एक जस्ट सिंबल है कि हम सब एक हैं। मरकजियत के लिए है ये, एक कह लीजिए कि इज्तमाईयत के लिए है, अदरवाइज तुम तो अल्लाह की तरफ झुकते हो। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ एक मैसेज और भी मिलता है कि नेकी रस्म और रिवाज की पाबंदी का नाम नहीं है। हम कुछ मौक़ों पे एक नेकी कर लेते हैं, जी ये रस्म थी, ये मरने के बाद की रस्में हैं, ये शादी के बाद की हैं, ये फलां महीने की रस्म है। असल नेकी क्या है कि ईमान, इबादत और बंदों के मामलात में आप अदल और इंसाफ से काम लें, यानी यू शुड बी फ्रूटफुल। अब यहाँ तक जो पारे का हिस्सा हुआ है ना, इससे आगे यानी 178 से लेकर इवन सूरत बकरा के एंड तक तीसरे पारे में ये सिलसिला जाएगा, यही इकसाम बिर हैं। वन बाय वन अल्लाह ताला मुख्तलिफ चीज़ों को पेश करते हैं, जिसमें सबसे पहले 178 से 182 में कसास और वसीयत का हुक्म है। यानी इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है। जब तक कुरान को समझ के नहीं पढ़ा था कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें इतनी ह्यूमन बातें। तो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल कसास। कसास क्या है कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा किया जाए। ब्लड मनी कह सकते हैं इसको, इसको दियत कह सकते हैं, कत्ल के बदले कत्ल, आप और मैं नहीं करेंगे। मुस्लिम हुक्मरान ये इख्तियार रखते हैं कि कातिल को पकड़ा जाए। अल्लाह के नबी के दौर में क्या रिवाज था कि एक के बदले 10-10 को कत्ल कर देते, कत्ल मालिक करके आता, उसके जवाब में उसके गुलाम को कत्ल करते। अल्लाह ने कहा यह जुल्म नहीं होगा। जब कातिल को ये खौफ होगा कि मैं भी कसास में कत्ल कर दिया जाऊंगा तो फिर वो किसी को कत्ल नहीं करने देगा। और इस आयत पे किसी ने शाह फैसल, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनसे सवाल किया था जब वो यूरोप में अपने इलाज के लिए गए कि तुम मुसलमान तो बहुत जालिम हो। आप पता है कि मुस्लिम सजाओं को बर्बेरिक कहते हैं, ये बड़ी इंसानियत सोज हैं। जैसे मैंने भी आपको नॉर्वे का बताया, तो नॉर्वे में कत्ल की सजा कत्ल नहीं है, यानी वहाँ किसी को मार नहीं सकते। इवन कुछ साल पहले एक शख्स ने 70-80 बच्चों को डुबो दिया था, लेकिन आज तक उसको उन्होंने फांसी की सजा नहीं दी। वो कहते ये जुल्म है। शाह फैसल साहब ने अपनी पर्सनल फाइल निकाल कर उसके आगे रख दी। क्या आप कहते हैं कि ये कत्ल की सजा बड़ी जालिमाना है, तो फिगर्स एंड फैक्ट्स देख लीजिए कि पूरे साल में यूरोप, अमेरिका और सारी दुनिया में कितने कत्ल रैकेट पे आए हैं, और सऊदी अरब में ना होने के बराबर है। तो अपनी जान जाने का खतरा दूसरों की जान लेने से इंसान को रोक देता है। इस्लाम तहफ़ुज़ देता है इज्तमाही और माशरी ज़िंदगी का भी और इनफरादी ज़िंदगी का भी। बज़ाहर ये कवानीन बड़े सख्त लगते हैं, आज वेस्ट में इस पर बहुत प्रोपेगंडा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अगर हम मुसलमान सही तरीके से मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ लें, किसी के हाथ कटे हुए नहीं आपको दिखेंगे। आप उमरे और हज पे जाइए, क्या सऊदी अरब में आपको लोगों के हाथ कटे हुए दिख रहे हैं? नहीं, लोगों को पहले ही पता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये होगा, तो सज़ा का डर अल्लाह की नाफरमानी से भी रोक देता है। और बल्कि आप देखें कि इस्लामी कवानीन रवादारी, बाहमी मोहब्बत और एहतराम और रहमत इलाही क्या इनादार है। अल्लाह कैसे जुल्म का हुक्म दे सकता है? गोया कि आप कह सकते हैं कि इस्लाम की हमदर्दियाँ मकतूल से हैं, और आज ये बातें करने वाले कातिल के हमदर्द लगते हैं। फिर इसके बाद वसीयत की बात से क्या पता चलता है कि इंसान जिंदगी में भी और मौत के बाद भी वसीयत माल की करके अल्लाह का कुर्ब ले सकता है। यानी अल्लाह को आपके माल की इतनी केयर है कि आपके बाद भी वो ज़ाया ना हो जाए। और जीने और मरने के हर असूल को इस्लाम ने हमारे सामने रख दिया। फिर इसके बाद आप देखिए कि इस्लामी तालीमात में अदल व इंसाफ को हर चीज़ पे फौकियत हासिल है। किसी वसीयत में कोई खराबी हो आप उसकी सलाह कीजिए, तो आज आप देखिए भाई बहनों के अंदर कितने झगड़े हैं, और वसीयत गलत करके एक बंदा अपनी सारी ज़िंदगी की नेकियां ज़ाया कर लेता है। तो गोया के इसमें बस अभी फ़िलहाल इतनी बात ही, क्योंकि सूरत निसा में इसके ऊपर मज़ीद बातें आएंगी कि इस्लाम आपको जीने मरने का हर तरीका सिखाता है। इसके बाद खूबसूरत आयते हैं रोज़े से मुतल्लिक, 183, 184 और 185। ये कुरान का वो मुकाम है जहाँ रोज़ा, कुरान, दुआ ये सब इकट्ठा कर दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब यहाँ लफ्ज़ सियाम देखिए, यहाँ सियाम का लफ्ज़ क्यों आया? जबकि सूरत मरियम में हज़रत मरियम के रोज़े का जिक्र आया तो वहाँ सौम का लफ्ज़ है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। तो सियाम और सौम का फ़र्क है। सियाम खाने पीने से रोकना, फर्जी रोज़ा, यानी वो शराइत जिसके साथ रोज़ा टूटता है। सौम कहते हैं अखलाकी तब्दीलियों को भी, यानी हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमने इस साल अपने सियाम को सौम में बदलना। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कहा सुना जाता है। फिर आयत शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान और कुरान साथ साथ। आज भी आप कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यकीनन आपको रोज़े की वजह से, अगर आप रोज़े की हालत में तो ज़्यादा बात समझ आ रही होगी। तो गोया के रमज़ान का तारुफ कुरान से किया गया। देखिए अगर आप इस आयत पे नज़र डालिए ना, होना क्या चाहिए था, शाहर रमज़ान अल्लज़ी तसूमु फ़ीह, रमज़ान वो महीना जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। हमारे जहनों में तो यही तसव्वुर है ना, नहीं, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्योंकि नबी सल्लम पे कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। फिर इसमें कुछ अहकामात भी हैं। तीसरी चीज़, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, दुआ। रोज़े की हालत में इंसान बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाता है, रूहानी तौर पे अल्लाह का कुर्ब महसूस करता है। तो यहाँ फिर बहुत प्यारे तरीके से बता दिया कि अल्लाह सुबहान तआला हर दुआ का जवाब देते हैं, और रमज़ान में दुआ की बड़ी अहमियत भी है, इसका एहतमाम करना चाहिए। और ये जो लफ्ज़ है ना, उजीब उदावत दा इदा दान, ये बड़ा खूबसूरत है। वेन एवर माई स्लेव विल कॉल मी, ये नहीं कहा कि इफ़ माई स्लेव कॉल मी। आप देखिए एक माँ कहती है मेरा बच्चा जब आएगा मैं पुलाव बनाऊंगी, इसमें और इस बात में कि अगर मेरा बच्चा आया तो पुलाव बनाऊंगी, फ़र्क है ना। यानी ये आयत आपको अल्लाह ताला के करीब करती है। अल्लाह ताला को मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए टाइम लेने की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई इंटरप्रेटर ज़रूरी नहीं है। तो कबूलियत दुआ के आदाब और शरायत अगर हम थोड़े से देख लेना, तो इंशाल्लाह हम अपनी दुआओं को और अच्छा कबूल करा सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला पर सही ईमान लाइए। किस बात का? कि दुआओं को सुनने वाला मेरा मालिक है। अल्लाह ने कुछ चीज़ें दूसरों को दी हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं दी, उनमें से एक चीज़, और वो क्या है कि दुआ कबूल करे या ना करे ये इख्तियार अल्लाह का है। ये किसी नबी वली को भी नहीं दिया, तो दुआ कबूल करना अल्लाह का काम है। दूसरी बात है कि जितना आप अल्लाह ताला की इताअत और उसकी फरमाबरदारी करेंगे ना, अल्लाह आपकी सुनेगा। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह चाहे तो नेक की सुन ले, चाहे तो बद की सुन ले। अल्लाह ने तो इबलीस की भी दुआ कबूल कर ली थी, रब्बी फानज़िरनी इला यौमि युबअसून, और अल्लाह ना सुने तो अम्बिया किराम की ना सुने। लेकिन आपका मेरा अदब यह है कि हम कोशिश करके अपनी दुआओं को कबूल करवाने की कोशिशों में रहे। उसके बाद आप देखिए आयत 187 में, पिछली शरीयतों में जो रोज़े के कुछ आदाब थे, कुछ शराइत थी, उसमें तब्दीली कर दी गई, जिसमें ओहिल्ल लकुम लैलत सियामिर रफस इला निसाइकुम, यानी रोज़े की रातों में शौहर बीवी के ताल्लुक को अलाउ कर दिया गया। पहली शरीयतों में रोज़ा 24 घंटे का हो जाता था, लेकिन अल्लाह ने गैर फितरी चीज़ों को हटाकर शौहर बीवी के ताल्लुक के लिए एक बड़ा प्यारा जुमला इसमें है, हुन्ना लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन। अगर आप इस पूरे में से मसाइल को साइड पे करके इस जुमले को ले लें, दैट इज़ द मोस्ट रोमांटिक सेंटेंस। आज शौहर बीवी क्या महबूब और महबूबा के ऊपर कितना कुछ कहा गया, इससे खूबसूरत कोई जुमला नहीं। लिबास की जो निस्बत जिस्म से होती है ना, ये शौहर की बीवी से है। एक कद काठ के बराबर होता है लिबास। लिबास आपके ऐब छुपाता है, लिबास शख्सियत का आईना दार होता है, लिबास फटा हो तो इंसान बेअदबी महसूस करता है। बिल्कुल शौहर को बीवी के लिए और बीवी को शौहर के लिए लिबास वाला काम करना चाहिए। अच्छे शौहर हमेशा अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छी बीवियां हमेशा अपने शौहरों की इज्जत करेंगी। बंद कमरे में जो भी मामलात हों वो कमरे में रहेंगे, घर से बाहर, कमरे से बाहर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और इसी तरह के बहुत खूबसूरत इसमें नुकात हैं, जो हम डिटेल में पढ़ें तो उसको लेते हैं। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह उम्मते मुस्लिमा के जोड़ों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। घरों में सुकून नहीं होगा ना, तो आप बाहर सुकून दे नहीं सकते। आज वेस्ट जिस चीज़ से अपसेट है ना, उनका फैमिली सेटअप टूटा हुआ है, क्राइसिस सेंटर। औरतें घर छोड़ छोड़ के हुकूमत के पास आती हैं, फिर एक एक औरत पे हुकूमत उतना खर्च करती है जितने में पूरा एक खानदान बन जाता है। वो कहते हैं ना रामा इकबाल के, खुद अपने खंजर से ये तहजीब खुदकुशी करेगी। एग्जैक्टली आज वेस्ट में यही कैफियत है। इस्लाम ने बहुत प्रोटेक्शन दी। बाकी देखिए ना, आप 100% परफेक्ट हैं, मुकम्मल हैं, ना आपके शौहर हैं। जैसी आप वैसे आपके शौहर, जैसी मैं वैसे मेरे शौहर, तो इसमें कमी बेशियों के साथ एक दूसरे को कबूल कर लेना चाहिए। फिर आयत 188 जो रमज़ान की आयतों के बाद है, इसमें देखिए माले हराम की बात आ गई। क्यों? वला ताकुलुम वालकुम बैनकुम बिल बातिल। इससे क्या पता चला कि रमज़ान के रोज़े रखवा के, हलाल से रोक के, अल्लाह ने हराम से रोकने की ताकत दी। यानी मोमिन की पूरी ज़िंदगी रोज़ा है, एक महीना हकीकी रोज़ा, हलाल से भी रुक जाते हैं और बाकी साल के दिनों में हराम से रुकना है। और इससे पता चलता है कि ज़िंदगी भर का रोज़ा है मोमिन का। और मुसलमान के माल का एहतराम वाजिब है। चोरी चकारी, छीन लेना, रिश्वत और इस तरह की चीज़ें, इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि नेकी और अच्छाई का मेयार रस्म परस्ती नहीं बल्कि तकवा है। जितना अल्लाह का डर होगा, हम दूसरों के माल जान के बारे में उतने केयरफुल होंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 189, यसअलूनका अनिल अहिल्ला में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक और पैगाम दिया कि नेकी का खुद साख्ता रसूमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, अरबों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी कि जिसमें वो चांद के घटने और बढ़ने के साथ शगुन लेते थे। अल्लाह ताला ने कहा वलैसा अलबिर्रु बियन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। अगर एहराम बांध लेते तो किसी वजह से घर में आना पड़ता तो सीधे नहीं आते थे, ऊपर से कूद के आते थे। अजीबोगरीब तोहम परस्ती जो आज हमें भी दिखती है। क्या बता दिया कि नेकियों का खुद साख्ता रसूमात से कोई ताल्लुक नहीं। बेमकसद और गैर मरबूत सवाल करना जहालत है। अल्लाह ने ऐसे सवाल करने से भी रोक दिया। फिर इसके बाद अब आगे क्विकली देखेंगे ना आप, तो अब वो अहकाम आता है जिनका ताल्लुक किताल और जिहाद से भी है और हज से। आयत 190 से 195 में जिहाद की कुछ बातें हैं। वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, हाँ लेकिन ज्यादती ना करना। यहाँ अगर आप नोट करें ना, तो ज्यादती से रोका गया। किससे? दुश्मन से। तो क्या अपनों से लड़ाई की जा सकती है? क्या पता चला कि मकसदे किताल क्या है? कि फितने का खात्मा हो, परसिक्वेशन। लोगों को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। और दूसरा मकसद यह कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, यानी दुश्मन से भी। वो कहते हैं ना, माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुसलमान ज़मीन के टुकड़ों पे हमला करने के लिए या तेल के कुओं पे हमला करने के लिए जंग नहीं करता, किसी दूसरे के रिसोर्सेज को नहीं लेना चाहता, बल्कि सिर्फ उधर लड़ाई होगी जहाँ किसी को उसके दीन पे अमल करने से रोका जाए। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए फितने को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी होता है। और आप देखिए कि मैदान जंग में भी नुसरत और मदद सिर्फ उन्हीं की होगी जो अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे। इसमें आप हिस्ट्री पढ़िए, मुलाहमात नबी की जंगें, आप हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स के हकूक की बातें चल रही हैं, तो जब आज का मुसलमान अपनी मर्जी से खुद डिफाइन करके जुल्म और बर्बरियत के कोई तरीके अख्तियार कर ले तो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहरी और मादी इसबाब को नज़रअंदाज करना शिकस्त और हलाकत का बायस होता है। मक्का के 13 साल बिल्कुल हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी, जंग ने कुफ़ोदिया को क्योंकि मीन्स नहीं थे। मदीना में आने के बाद बदर से तबूक तक की जो जंगें लड़ी गईं हर एक के पीछे एक कहानी है। आप इस मौजू को पढ़िए, आपको इस्लाम के चेहरे पे लगे हुए कई धब्बे मिटते हुए दिखेंगे। आज इल्ज़ाम है, टेररिस्ट कहते हैं लोग मुसलमानों को, क्योंकि हमने अल्लाह के नबी का ये रुख लोगों को दिखाया नहीं है। इसके बाद 196 से 203 में हज और उमरे के रिचुअल्स हैं, और आप पीछे से देखिए ये इकसामे बे रहे हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और कुरान ने या इस्लाम ने कोई फील्ड ऑफ लाइफ छोड़ा नहीं है कि जिस पे आपको गाइडलाइन ना दी हो। हज और उमरे के अहकामात के दौरान जो उस दौर में लोगों की बातें थी, जो खराबियां थी, उस पे 196 से 203 है। हाँ, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम। कुछ लोग हज और उमरा भी करते हैं ना, तो वहाँ दुनिया दुनिया की बातें हैं। अल्लाह कहता है हज या उमरे पे भी जाते हो तो वहाँ दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। साल के मुख्तलिफ दिनों में जो इबादत होती है ना, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन हज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए फरमाया अल हज अशहरु मालूमात, हज के तो महीने मालूम है। हाँ, उमरा साल में किसी वक्त भी कहीं भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि हज इस्लाम में कहाँ खड़ा है, उसकी क्या स्पेस है, या अच्छा हज कौन सा है। तो इस पे निसाई की एक रिवायत है 2628 में अबू हुरैरा से कि जिसने अल्लाह के घर का हज किया और इस दौरान कोई शहवानी बात ना की, यानी कोई लस्ट और ऐसी वल्गर बात ना की, कोई गुनाह ना किया, फिस्क गुनाह कबीरा गुनाह कुछ भी, वो गुनाहों से इस तरह पाक होके आता है जैसे उसकी माँ ने उसको जना है। तो अल्लाह करे कि आप और मैं भी हज करें ताकि हम अपने पिछले गुनाहों को माफ़ करें और आगे से एक नया खूबसूरत सफ़र शुरू करें। और दौराने तवाफ़ रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान की वो मसनून दुआ जो मेरे आले हम सब बचपन से सुनते आए, शऊर के साथ मांगेंगे, रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और हसना क्या है? जो अल्लाह की रज़ा से मिले, जिसके बाद नाफरमानियाँ ना हों, और जिस रिस्क को पाकर इंसान रिबेलियस ना हो जाए।